टाइट कर ले। हाँ थोड़ा खोलो खोलो, थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा ऐसा चाहिए। हाँ बस ठीक है, बस बस तोड़ जाएगा वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 30 जनवरी 2018 की संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। जैसे हमने अभी मंत्र बोला ना, हरे कृष्णा वैसे ही बोलते रहेंगे 30 मिनट भी तो भी परफेक्ट है, कोई और बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि सारे प्रवचन जितने होते हैं ना, वो हम लोगों को भगवान का नाम बोलने के लिए प्रवृत्त करने के लिए होते हैं, इतना समझना बहुत जरूरी है। जितनी भी कथाएं बोली जाती है, जितना भी सिद्धांत बोला जाता है, जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश किए जाते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हम सब लोग भगवान के नाम का जप करें, हम सब लोगों को भगवान के नाम में इंटरेस्ट पैदा हो, हम सब लोग भगवान का नाम निरंतर जप करते रहे, जप कर सकें। इसलिए ये सब प्रयोजन है, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कलिर दोषेर निधिर राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। इसका अर्थ यह है कि 11वें स्कंद में नव योगेंद्र नाम के 9 संत हैं। हाँ, राजा ऋषभदेव जो भगवान के अवतार हैं, उनके 9 पुत्र हुए, उनको नव योगेंद्र के नाम से जाना जाता है। वो महाराज निमि को उपदेश कर रहे हैं, आखिरी आखिरी ऋषि जो है ना, 9वें करभाजन ऋषि। वो बोल रहे हैं कलिर दोषेर निधिर राजन, राजन नहीं, राजा को बोल रहे हैं, हे राजा, कली जो है ना, कलियुग ये दोषों का सागर है, दोष निधि अमाप, तिजोरी कैसे होती है, भर के होती है ना, जैसे निधि भरा हुआ है। निधि किस चीज का है, दोषों का, फॉल्ट्स, हाँ त्रुटियां दोष भरा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि कलयुग में कोई आना पसंद नहीं करता है, कोई देवता पृथ्वी पर नहीं आता है, कोई यज्ञ होने के बाद में आहुति स्वीकार करने के लिए कोई आते नहीं है। कलयुग में कोई ऋषि मुनि आना पसंद नहीं करते, क्योंकि कलयुग में इतने दोष हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है, ये भी कहा गया है, लेकिन ये भी एक कहा गया है कि फिर भी संत लोग कलयुग की पूजा करते हैं, कलयुग का गौरव करते हैं, कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि अस्ति एको महान गुण, इसके अंदर एक ऐसा महान गुण है जो सारे अन्य महान अन्य दोषों को नष्ट कर देता है। वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान के नाम का गुणगान और कीर्तन। ये एक गुण ऐसा है कलयुग में जो इतना अच्छा गुण बाकी युगों में नहीं है। बाकी कितने सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, राम भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, वराह भगवान आते हैं, नरसिंह भगवान आते हैं, हयग्रीव भगवान आते हैं, इतने अच्छे अच्छे युग हैं, देवता लोग नीचे आते हैं, आदमियों से बात करते हैं। इतने अच्छे युग में भी इतना अच्छा गुण नहीं है जो कलयुग में है। केवल भगवान का नाम लेने से क्या, आगे चौथा पाठ क्या लिखा है, मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्त संग परम व्रजेत का अर्थ है, व्रजेत का मतलब है जाएगा, परम का मतलब है परम लोक में जाएगा। मुक्त होकर परम लोक में जाएगा क्या करने से, भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करने से। अगर ये लाइन आपको समझ में आया तो बाकी प्रवचन करने की जरूरत ही क्या है। इतना जिसके मन में समझ में आया हुआ है उसके लिए कोई प्रवचन कोई उपदेश की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी प्रवचन किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कलयुग का एक और गुण है, जो भी बताया हुआ वो याद नहीं आता है, याद रहता नहीं है। कल दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी तो बहुत देर सर खुजाना पड़ेगा, क्या खाया था कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, पिछले दिवाली में क्या मिठाई बनाई थी घर पे, वो तो बहुत दूर की बात है। बोले पीएचडी होगा तो ही मिलेगा उसको ये याद। ये प्रॉब्लम है कलयुग का, स्मृति बहुत कम है। स्मृति कम ऐसे है कि पिछले जमाने में पिछले युगों में जो सुनेगा ना वो याद रखेगा। कुछ भी आप बोलो, गाली दो, उपदेश दो, भगवान के बारे में बताओ, जो बोलेगा वो याद रहेगा। जैसे कैसा है रिकॉर्डर, कैसा है इसके अंदर कुछ भी बोलो ये रिकॉर्ड करेगा और परमानेंट रखेगा आपके लिए। 100 साल के बाद खोलो फिर भी मिलेगा आपको। मतलब रिकॉर्डर जो है ना वो चुनता नहीं है कि अच्छा बोलेगा तो रिकॉर्ड करूंगा, बीच में बुरा आएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? वैसे इस रिकॉर्डर की तरह हमारे कान पिछले युगों में हुआ करते थे। जो भी उपदेश किया उसको धारण किया, जो भी सुना यानी श्रुति धर यानी धारण किया उसको, कुछ भूलते ही नहीं थे। इसलिए किताब विताब जो है ना ये सब अभी के अभी आई हुई है, पिछले युगों में किताब नहीं थी, जो भी है इधर था, यहां से अंदर स्टोरेज में रखा है, जो भी है भूला नहीं। और आगे जाकर जब गुरु बनेगा तो अपने शिष्यों को बताएगा, फिर वो धारण करेगा अपने शिष्यों को बताएगा। इस तरह से सब लोगों को ये ज्ञान प्राप्ति होती थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती थी, एक बार बताने से काफी था। कितना अच्छा होता ना, सासू जी ने आपको ये सब्जी बनाने को सिखाया कि तुम साउथ इंडियन घर पे आई हो, तुम महाराष्ट्रियन हो लेकिन साउथ इंडियन घर पे शादी करके आई हो, सांभार इस प्रकार से बनता है, एक बार दिखा दिया तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? कई बार मिस्टेक सांभार बनाना पड़ता है, मिस्टेक सांभार, फिर वो सही सांभार बनेगा, है ना? क्योंकि याद नहीं रहता ना, याद ही नहीं रहता। अरे इस टाइम पे उड़द दाल भूल गया, उस टाइम चना दाल भूल गया, उस टाइम पे कड़ी पत्ता भूल गया, ऐसा होता है। ये सब कलयुग की भयंकर स्थितियों को देखते हुए भगवान ने तय किया कि कलयुग में अगर मैं बड़ा बड़ा नियम लेके आऊंगा ना तो कोई पालन नहीं कर पाएगा उसको। कैसे पालन कर पाएगा? कोई कैपेसिटी नहीं है। अभी आजकल के लोगों को बोलेंगे ना आपको 7 बजे उठना है, तो बोले 7 बजे इतने जल्दी सुबह सुबह क्यों बुलाते हो किसी को बोलेंगे ना कि हमको पिकनिक में जाना है 6:30 बजे आना है गेट पर, तो बोलते बाप रे इतना जल्दी रात को बुला रहे अभी भी बोलते लोग 6:30 को इतना जल्दी बुलाते आप, थोड़ा लेट करो ना, 7:30 करो, फिर 7:30 करोगे तो 8 बजे आएंगे। उसका मतलब क्या, कोई नियम का पालन नहीं कर सकते, जल्दी उठने का वगैरह इम्पॉसिबल है, सिंपल सिंपल चीज भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग कैसे उपवास करते हैं? हाँ, साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, साबूदाने का वड़ा खाते हैं, कोकोनट की चटनी खाते हैं, कुट्टू के आटे का लड्डू खाते हैं, हाँ एकादशी की जलेबी खाते हैं, ये सब करके बोले कितना कड़क उपवास किया 24 घंटे के लिए, पारण कितना बजे है, बोले 8 बजे पारण करना है उसका, उपवास को ब्रेक करना है, तो वो कल कितना ब्रेकफास्ट में खाया था उससे दुगना ब्रेकफास्ट खाएगा। ये मन में ही है, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, ये सोचकर ही मन में इतना प्रेशर आ गया है कि कितना जलेबी खाया वो भूल गया, लेकिन उपवास किया, उपवास किया, उपवास किया, ये सोच में से ही अगले दिन डबल ब्रेकफास्ट करेगा। मराठी में क्या बोलते हैं, एकादशी दुप्पट खाशी, ऐसा हमारे मराठी में बहुत सुंदर मन है मन। तात्पर्य क्या है कहने का इसका, कि कलयुग में ना कोई आदमी कुछ कर ही सकता नहीं है। मैं कुछ लोगों को पिकनिक में लेके गया था मैं, हाँ बच्चे थे, बच्चे मेरी उम्र उनसे कम से कम 3 गुना है, लेकिन आधा घंटा हो गया तो थक गए सब लोग, सुन के ही खा लिया, बोल के नहीं, सुन के ही थक गए, सो रहे हैं। और मैं बोला चलो तेज चलना है, तो मैं आधा किलोमीटर आगे और सब जवान लड़के लड़कियां मेरे 1 किलोमीटर पीछे। बोला तुम लोग की उम्र क्या है, बोलते 20-21 साल। मैंने मेरी उम्र नहीं बताई उनको, लेकिन क्या कहूं, इतने ही उम्र में बुढ़े हो गए, चलने को नहीं होता है, धीरे धीरे चल रहे, एक बैच पीछे ही है, एक बैच साथ में है, एक और पीछे है, उसके बाद में एक पीछे और बैच है, आगे नहीं आ सकते। 20 साल की उम्र में बुढ़े जैसा व्यवहार करने की स्थिति कलयुग में आ गई है ना। हमारे बच्चों को बोलो आप सुबह 8 जल्दी उठ के जरा जाना है, बोले पापा इतने जल्दी क्यों उठना है, खेलने के लिए भी उनको आजकल शक्ति नहीं है, बोलो हाँ टीवी देखने को बोलो घंटों घंटों बैठ के देखेंगे, मोबाइल पे एक जगह बैठ के एक नज़र भी बंद ना करते हुए मोबाइल में देखेंगे 3 घंटे तक, याद आएगा अरे बंद ही नहीं गया बीच में, पलके बंदी खुली रही, वो कर सकते बैठे बैठे जो बोलो वो कर सकते, लेकिन उठने को बोलेंगे ना, बोले टेबल पे चढ़ के जरा माले पे से एक बैग निकालना, तो नहीं निकाल सकते, तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये स्थिति को देखकर भगवान भी सोचते हैं कि बेचारे कलयुग के लोग क्या करें, इनको कौन सा हॉर्लिक्स दे दे, कौन सा च्यवनप्राश दे दे कि थोड़ा चुस्ती आ जाए उनके अंदर, है ना। ये सब हमारी भी स्थिति है बाय द वे, कितना जोश हुआ करता था, हुआ होना चाहिए था, उतना उत्साह नहीं है। वो हमारी बिल्डिंग में सोसाइटी में कुछ लोग है 85 ईयर 90 ईयर्स, इतना कड़क चलते एकदम जोरदार, सुबह उठ के चलते, और हमारे गुरु महाराज भी जब भी हमको सबसे पहले मिलने आए थे ना, तो हम लोग सब लोग 20 साल के थे और हमारे गुरु महाराज 36 साल के थे उस समय, और गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर की होती थी वॉकिंग, आज भी होती है, अभी नहीं, अभी बद्दी नहीं हो गई, वो कम नहीं हो गई, अभी उतनी है। तो 22 किलोमीटर की परिक्रमा में हमारे गुरुदेव भाग के परिक्रमा करते थे, बोलो रनिंग, हम लोग थक जाते थे, और क्या उम्मीद होती थी कि लास्ट लास्ट में परिक्रमा आएगी ना, तो लोग धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा धीरे धीरे, क्योंकि भी क्या थक गए ना अभी, इतना 20 किलोमीटर चल के गए, 2 किलोमीटर बाकी है, तो एकदम स्लोली करेंगे। तो हमारे गुरुदेव क्या करते थे, लास्ट 2 किलोमीटर भागते थे, और हम लोग की एकदम ऐसा क्या बताएं, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ना रुकने को ना भागने को, ऐसी हालत होती थी, और वो भागते थे। आज उनकी उम्र 68 साल की हो गई है, और आज भी वही स्थिति है, 3-3 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन बैठने वाले सुनने वाले सो जाते हैं। सोचो आप कि हमारी क्या स्थिति है। तो भगवान ने बोला बेचारे कलयुगों को लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, वैसा ही नियम रखा कठिन वाला, तो सब लोग इधर रह जाएंगे, एग्जाम में कोई पास ही नहीं होगा, है ना। जैसे बच्चे लोग अगर डप्पू होंगे तो कैसे इजी पेपर निकालना पड़ता है उनको पास करने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पेपर निकाला तो सब फेल हो जाएंगे, और सब फेल होकर कैसे चलेगा, उसको तो पास होना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं, पेपर को आसान कर देते, चलो यस नो बोलो चलेगा, टिक मारो, टिक और फुली दोनों में से एक मारो, ज़्यादा मेहनत भी मत करो। अभी कैसा लोगों को ना पेपर लिखने को भी बोर होता है, बोले लंबे प्रश्न का उत्तर, लंबे प्रश्न मतलब उत्तर वाला प्रश्न क्यों देते हो आप, ऐसा प्रश्न दो कि टिक मार्क हो जाए और क्रॉस हो जाए बस, और लिखना ही है एका वाक्य तो उत्तर दिया बस, एक लाइन में एक उत्तर लिखो, मेरा गांव कौन सा है, तो मेरा गांव उडुपी है ऐसा नहीं, खाली उडुपी बस। बच्चों को पूछेंगे ना व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा गणेश, ऐसा नहीं बोलेगा माय नेम इज गणेश तानपुरे, ऐसा नहीं बोलेगा। उतना भी तकलीफ होता है उनको माय नेम इज बोलने के लिए। पिताजी का नाम तो भूल ही जाओ, सरनेम भी नहीं बोलते। व्हाट इज योर नेम, गणेश। वेयर डू यू स्टे, प्रभा देवी। क्यों मालूम है, आलस्य है बहुत, लेजीनेस, थका हुआ है, जन्म से थका हुआ है बेचारा। अभी जन्म हुआ ही नहीं फिर भी थका हुआ है, ये स्थिति हमारी। तो ये सारी स्थितियों को तारने के लिए भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो बेचारे मेरे कलयुग के जीव हैं, बहुत तकलीफ उठा के आए हैं और तकलीफ उठा के जी रहे हैं, उनको उद्धार करने का कोई आसान तरीका ढूंढ के निकालो। बोलते कोई बात नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, हाँ कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई घरदार छोड़ के संन्यास लेने की जरूरत नहीं, कोई पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, जिधर रहना है उधर ही रहो, जो करना है वो करते रहो, खाली जहां पर भी हो जो भी कर रहे हो उस समय मेरा नाम लो, बस मेरा नाम लो और इतना ही समझ जाओ कि यही सबसे बड़ी चीज है और करते रहो, और इतना ही काफी नहीं, इतना आसान पेपर कर दिया आपका, हाँ इतना एग्जाम पेपर इतना आसान कर दिया कि बच्चा भी पास हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बुढ़ा हो सकता है पास, औरत पास हो सकती है, आदमी पास हो सकता है, धनवान पास हो सकता है, गरीब भी पास हो सकता है, काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, देशी भी हो सकता है विदेशी भी हो सकता है, हाँ चाइनीज भी हो सकता है और जापानीज भी हो सकता है, सब लोग हो सकते हैं, खाली इतना समझ में आना चाहिए। अरे भगवान, लेकिन यहां पर रुके नहीं भगवान, भगवान क्या बोलते हैं, ये नाम जो मेरा है ना वो बांटने के लिए मैं खुद आता हूं, खुद आता हूं खुद। तो भगवान ने ऐसा अवतार लिया जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में भगवान स्वयं भक्त बनकर आते हैं, है ना, पिछले सारे युगों में भगवान भगवान बनकर ही आते थे, डिफरेंस है ना, फर्क है ना, डॉक्टर डॉक्टर बन के आ रहा है कि चपरासी बनकर आ रहा है, ये फर्क है ना उसके अंदर। तो पिछले सारे युग में भगवान भगवान बनकर आए, कभी राम बनकर धनुष बाण लेकर आए, कभी कृष्ण बनकर चक्र लेकर आए, कभी नरसिंह भगवान को नाखून लेकर फाड़ दिया उसने हिरण्यकशिपु को, कभी गदा लेकर आए, कभी कुछ लेकर आए, लेकिन कलयुग में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, भक्त बनकर आए और भगवान का नाम सबको दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है समझना, कितनी बड़ी कृपा है हमको समझ में नहीं आएगा। वही भगवान जिस भगवान ने पिछले युगों में रावण कुंभकर्ण जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया, जरा सा गुस्सा की किया आउट तुरंत, कृष्ण भगवान के रूप में आए ना तो मथुरा नगरी में गए, धोबी ने बोला, धोबी को बोला, ए धोबी हमको वस्त्र दे दो पहनने के लिए, धोबी ने बोला ए बच्चों कौन लोग तुम लोग, क्या समझते हो अपने आपको, राजा कंस के वस्त्र है ये, तुम गांव के गवार लड़के लोग राजा का वस्त्र मांगते हो, चलो जाओ यहां से। तो भगवान ने क्या किया, खाली उसका एक हल्का थप्पड़ दिया गल पे, हल्का थप्पड़ दिया, खत्म हो गया उधर ही वो, फिनिश्ड। रोमहर्षण सूत नाम का एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था और वहां से बलराम जी ने प्रवेश किया, बलराम जी भगवान है स्वयं, प्रवचन करने वाला कितना बड़ा विद्वान होगा तो भी वो जीव है ना, जीव मनुष्य है वो, तो खड़ा होना चाहिए तुरंत, तुम जो मैं बैठा हूं, तुम जो कथा कर रहा हूं, तो मेरे गुरुजी वहां से आते हैं तो मुझे कथा बंद करके खड़ा होना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा, आइए महाराज बैठिए आप बोलिए, ऐसा ही बैठ के कथा करता रहा। बोले मैं तो बड़ा कथा कर रहा हूं, गुरु जी आए तो क्या उनको बैठ के सुनना चाहिए, ऐसे बोलूंगा तो भगवान फटका देंगे मुझे अच्छी तरह से। तो ये व्यक्ति क्या किया, कथा बोलता ही रह गया, बलराम जी ने प्रवेश किया बोलता ही रह गया, तो बलराम जी का अपमान हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बलराम जी को लगा कि कथा बोलने वाला जिसका लोग आदर करने वाले हैं वो अगर ऐसा व्यवहार किया तो आगे जाके भी यही चलता रहेगा, क्योंकि जो कथा बोलने वाला होता है वो कुछ अच्छी बातें बताता है और वो जैसा व्यवहार करेगा वैसे लोग फॉलो करेंगे, अगर भगवान आ गए कथा में फिर भी कथा वाला कथा ही बोल रहा है दंडवत नहीं कर रहा है तो लोग समझेंगे ये सही है ऐसा ही करना चाहिए, है ना, बच्चे कैसे माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते हैं। माँ बाप ने गलत किया तो वो भी गलत करते हैं। तो भगवान ने एक पत्ता उठाया और पत्ते से गले में स्पर्श किया, खाली उसको इधर स्पर्श किया, मर गया वो, ऑन द स्पॉट डेड। और एक बार हमारे बलराम जी गए थे हस्तिनापुर, वो कृष्ण के लड़का है ना, सांब नाम का लड़का है भगवान का, कृष्ण भगवान का लड़का है। द्रौपदी के लड़की का उसने अपहरण किया स्वयंवर में, उसका नाम था लक्ष्मणा। थोड़ा पर्दा बंद कर दो, लाइट आ रहा है बहुत। तो लक्ष्मणा का हरण किया तो वो कौरवों को अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया मालूम है, ये सांब को अरेस्ट कर दिया, लक्ष्मणा को भी लिया अपने कमरे में रखा और सांब को अरेस्ट किया, बंद कर दिया जेल में। तो बलराम भगवान बल सब यादव लोग हैं ना, वैसे गुस्सा हो गए, बहुत बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने कहा कि क्या समझते हैं कुरुवंशी लोग अपने आप को, ये भीष्मदेव ये सब कौरव लोग क्या समझते हैं, अभी युद्ध करते हैं उनके साथ में, हमारे बालक को अरेस्ट करते हैं, स्वयंवर में राजकुमार राजकन्या का अपहरण कर सकता है, ऐसा नियम था उस समय का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों ने अपहरण किया हुआ है, भीष्मदेव ने भी किया था 3 कन्याओं का। लेकिन बलराम जी बोले, अरे भैया हम लोग परिवार के लोग हैं, वो कुरुवंशी है, हम यदुवंशी, हमारा रिश्ता है, हम लोग रिलेटिव्स हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं हूं ना, जाके कोशिश करता हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो अच्छा है। तो बलराम जी गए और एकदम भगवान है स्वयं बलराम जी, प्रेम से बोल रहे हैं उनको, देखो सांबा हमारा भतीजा है, तुम्हारी बेटी का बेटी को बोटी उसको अच्छी लगी है, उसने विवाह करना चाहा है, उसको छोड़ दो और विवाह कर दो, हम लोग डाउरी लेकर आए हैं, मतलब हम लोग शादी करने की तैयारी लेकर आए हैं। वो तो लड़के वाले थे ना, डाउरी की बात नहीं थी उनको, वो तो शादी की तैयारी कर ब्राह्मण लोग को भी लेके आए। तो क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग यदुवंशी लोग, और तुम लोग जो आए हो ग्वाल बाल हो, तुम लोग गाय पालने वाले हो, गोबर में गोमूत्र में घूमते रहते हो, तो हमको सिखाते हो क्या करना चाहिए। हाँ मतलब क्या बोलते हैं मालूम है, पैर की जूती सर पर बैठना चाहती है, ऐसा शब्द है भागवत में, जो चीज पैर में होनी चाहिए वो सर पर बैठने का प्रयास कर रही है। तुम्हारा लड़का हमारी लड़की शादी करना चाहता है, क्या समझते हो अपने आप को तुम लोग, ऐसा कौन बोल रहे हैं, बलराम को कुरुवंशी लोग बोल रहे हैं। तो इनकी आंखें ऐसी लाल लाल हो गई, कोयले जैसे, जैसे कि आंखों से ही पूरा दुनिया भस्म कर देगा, ऐसा आंख बन गई उनकी। और क्या किया मालूम है उन्होंने, विचार करके सुनना क्या किया उन्होंने, अपने हल को उठाया और हल के नोक से पृथ्वी के पृष्ठभाग से हस्तिनापुर को अलग कर दिया, जिससे मैंने ऐसा एक कोई ऐसा हथौड़ा लिया और ये पूरा उठा लिया उससे। हाँ बोले क्या है, इतना तो क्या 5 ग्राम का भी नहीं है, उसका एक सोई से ऐसा उठा लिया पूरा। ऐसा भगवान ने अपने हल के नोक पर पूरे हस्तिनापुर को उठा लिया और उठाकर जमुना जी में डुबाने के लिए ले जा रहे हैं, और उसके सब लोग भाग रहे हैं, कुरुवंशी लोग, दुर्योधन और कौरव और भीष्मदेव और पांडव सब लोग भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, सब हाहाकार मच रहे हैं। तो तुरंत भाग के सांबो को लेके आए, लक्ष्मणा को आगे रखा, सांबो को पीछे रखा, और अपन लोग सब उसके पीछे आए, बोले भगवान माफ करो, गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने सोचा ऐसा ही चल रहा है, गलती से मतलब अज्ञान में हमारे हाथ से गलती हो गई, माफ कर दो माफ कर दो। तो जब लक्ष्मणा को सांबा को सामने देखा ना, उठाए हुए हस्तिनापुर को वापस जमीन पर रख दिया। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बकवास कथा करते हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है, भगवान क्या नहीं कर सकते। हमारे बच्चे लोग कैसे हैं, वो नकाशे में से है ना ऐसा महाराष्ट्र को उठाते हैं वो इधर रखते हैं, फिर कर्नाटक को उठाते हैं इधर रखते हैं है ना, फिर केरला को उठाते हैं इधर रखते हैं, यूपी को उठाते उधर रख देते, वो तो वो एक खिलौना है। लेकिन भगवान स्वयं उठा रहे, पूरे शहर को उखाड़ रहे। ये सब क्यों बता रहा हूं, वो लोग भगवान जो अपने हल्के नोक पर पूरे शहर को उखाड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर, वो कलयुग में कैसे आते हैं, कोई शस्त्र नहीं, कोई हल नहीं, कोई धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, कोई गदा नहीं, कोई चक्र नहीं, कोई दंडा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे आ रहे प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लोग क्या बोल रहे हैं उनको पता है, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताया बलराम जी की। मैं बलराम जी की कथा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए, कोई हल लेकर नहीं है, कोई गदा लेकर मुसल लेकर नहीं आए, ऐसे ही आए। और कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको क्या बोल रहे हैं, देखो नित्यानंद, देखो हरिदास ठाकुर, आप दोनों घर घर जाना और घर घर जाके उनको बोलना कृपा करके, कृपा करके भगवान का नाम लेना, यही कलयुग का सार है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण जीवन प्राण, यही सब कुछ है जीवन का, कुछ मत करो, भगवान का नाम लो। तो लोग आते थे ना, वो दरवाजा खटखटा के उनको बोलते थे, तो बोलते थे तुम कौन हो, तुम्हारे इतनी हिम्मत हमको समझाने की, हम लोग पंडित लोग हैं, सब जानते हैं हम लोग, तुम लोग कौन हो, घटिया किस्म के लोग हो तुम लोग, हमारे दरवाजे पर हमको सिखाते हो, चले जाओ यहां से, ऐसे उनको लोग बोलते थे। अभी अगर बलराम जी होते, बलराम जी के रूप में होते ना, तिनका उठाते और गले पे लगाते, बस सब सबकी विकेट उधर ही, हरि बोल। लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा बोलने के बाद भी क्या बोल रहे पता है आपको, उनके चरणों में गिर रहे हैं। कौन है वो गिरने वाले, बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु के रूप में चरणों में गिर रहे हैं और बोल रहे हैं आपको जो गाली देना है दे दो, जो बुरा भला बोलना है, घटिया बोलना है, क्या बोलना है बोलो, आप जो बोलना है बोल सकते हो आप, लेकिन भगवान का नाम जरूर लो, हम आपकी गालियों के लिए बुरा नहीं मानेंगे, आपने धुतकार दिया हमको, हाँ तुच्छ बना दिया, क्या क्या बोला, बड़ा भुला बुरा भला बोल दिया, नो प्रॉब्लम, हमको कोई इतराज नहीं है हमारी, फिर भी आपको हाथ जोड़ के एक ही विनती है, आप भगवान का नाम लो। और दरवाजा धाड़ करके मुंह पे बंद करते थे, ये इतना बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं, फिर ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, फिर बोलते हैं ए कौन है, बोला ना एक बार, चले जाओ यहां से। तो बोलते हैं आप हमारे मुंह पर 50 बार दरवाजा बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे आपको एक ही हाथ जोड़ के विनती है, हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, भगवान का नाम लो। इतनी दया हो सकती है किसी के अंदर, बताओ आप? हाँ, वो चपरासी नहीं है वो, कि सांप का लेटर लेके नहीं आया है वो, वो भगवान है स्वयं, खुद दरवाजे पे आके खटखटा रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान का नाम लो, मतलब भक्त बनकर आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग भी, आप लोग होते ना, एक बार में दिमाग हमारा उड़ जाता पूरा, मतलब क्या समझते हो, एक मुक्का मारते हैं हमको, आप जानते हो आपके अच्छे के लिए आप खोले वाले देते हो, एक मार देंगे उसको, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान बड़े दयालु हैं, हम लोगों का कल्याण चाहते हैं। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी दोपहर को बुला के आप क्या समझा रहे हो, ड्यूटी पर जाना है हमको, लेकिन भगवान बता रहे हैं आपको कि भगवान आपके लिए क्या नहीं कर सकते, आपके कल्याण के लिए क्या नहीं कर सकते भगवान, खुद को भी नीचा दिखा सकते हैं, खुद गुलाम बन के आ सकते हैं, दास बन के रह सकते हैं, आपका अपमान सह सकते हैं, आपकी गाली सह सकते हैं, लेकिन बोल सकते अभी माँ कैसे होते वाले ना, माँ आपके पास, भगवान तो दूर की बात है, आपके पास माँ का एग्जाम्पल है ना, माँ के ऊपर कितना बच्चा लात मारता है, वो खाना खिला रहे तो उसको लात मारता है, मारता है ना, तो बच्चा क्या बोलती है, जा भूखा मर जा, ऐसा बोलती है माँ। लात मारने पर भी वो सब उड़ गया ना पूरा सब कुछ खाना, वो साफ करेगी, नया खाना लेके, फिर नया गोद में लेके, फिर खिलाएगी उसको, ऐसा नहीं बोलेगी कल रात को 10 बजे तुमने लात मार कर सारा खाना गिराया था, अभी मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगी, कभी मैं नहीं खिलाऊंगी, एक बार मेरा तुमने अपमान किया है, जा तू भूखा मर जा, ऐसे माँ कभी बोलती है क्या? 50 बार लात मारने पर भी वो तुमको खिलाती रहेगी, तुमको भी तुम्हारी माँ ने खिलाया, तुम अपने बच्चे को खिलाते रहोगे। भगवान भी कुछ ऐसे ही है, भगवान तो परम माता है, हम तो दुनिया की माता है, भगवान तो परम माता है, जितना तुम्हारे को माता के रूप में बच्चे पर प्रेम होता है, उसके करोड़ों गुना भगवान को अपने बालकों पर प्रेम होता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, माता किसके लिए कर रही है, बच्चे के कल्याण के लिए कर रही है, ये जानकर के बच्चा बेचारा अनजान है, उसको क्या मालूम है, उसको क्या ज्ञान नॉलेज है, वो तो अज्ञानी बालक है, वो करेगा ही, उसको क्या है, उससे क्या उम्मीद कर सकती हूं मैं, ये सोचकर प्रेम से करुणा से उसको बार बार खिलाती रहती। वैसे भगवान भी बोल रहे हैं 50 बार दरवाजा मुंह पे बंद करो मेरे, गालियां बको मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको विनती करता हूं, भगवान का नाम लो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण, कहो कृष्ण सीखा, ऐसे भगवान है। क्योंकि वो बड़ी आसानी से हम और आप लोगों को मुक्त करना चाहते हैं, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। उनको समझना बड़ा मुश्किल है, लोगों को लगेगा कि कहानी झूठी है, ये कैसे कहानी हो सकती है, ये सच नहीं है, ये मन को बहलाने के लिए संतों ने लिखी हुई है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन भगवान ने ना केवल कहानी बनाई है, भगवान ने खुद आकर ये सब किया हुआ है, और वो है चैतन्य महाप्रभु। अरे इतना नहीं, जब उनका जन्म हुआ ना, अब ये तो सब कब कर रहे हैं, जब बड़े हो गए 20 साल 24 साल के हो गए, तो सब जगह जा जा के लोगों को हरि नाम भगवान का नाम दे रहे हैं। लेकिन अपने जीवन में करने वाले क्या है, ये उन्होंने जन्म के टाइम पे ही दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? उनका जन्म जो है ना, वो हो ही नहीं रहा था, माता गर्भवती है, 9 महीना तो उलट गया, बहुत सारे महीने भी ऊपर गए, कितने महीने हो गए, 13 मंथ्स, कलयुग की बात है ना, तो 9 महीने का टाइम है, ज्यादा कम टाइम नहीं है, 9 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, 10 महीने हो गए, 11 भी हो गए, 12 भी हो गए, 13 भी हो गए, तो ये बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है, सब टेंशन में आ गए। अभी आपके घर में समझो किसी का फुल टर्म हो गया, तो आप लोग टेंशन में आएंगे ना, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर का क्या हो रहा है, पेन नहीं कुछ नहीं, क्या सीजर करना है कि क्या करना है, क्या इंडक्शन करना है, इंड्यूस करना है, उनको पिटोसिन ड्रिप देना है क्या, ऐसा आप पूछेंगे ना, क्या घर पर बैठेंगे नहीं। अभी उस टाइम पर सीजरन नहीं था, पिटोसिन ड्रिप नहीं थी, तो क्या करेंगे, ज्योतिषी को बुलाया ज्योतिषी कौन, जो गर्भवती माता है उसके पिताजी ज्योतिषी, वो बोल रहे हैं अरे ये बालक जो है ना, वो ऐसे समय का इंतजार कर रहा है, आप देखते रहो, उसका समय का मतलब क्या है कल 31 जनवरी है, कल क्या है, आप बोलेंगे जनवरी का लास्ट डे है, नहीं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, कल क्या है, कल चंद्र ग्रहण है, शाम को 5 से 8 बजे तक चलेगा, शाम को 5 से 8:30 बजे तक चलेगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में लोग क्या करते हैं बताओ, कोई जानकार रखता है कि आपके अंदर, आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जानकारी है कि चंद्र ग्रहण में क्या करते लोग, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, जप करते हैं भगवान के नाम का, और क्या करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, नदी में अपने आप को डुबाते हैं गले तक, और हाथ में से माला लेकर जप करते रहते हैं, जब तक ग्रहण का समय है तब तक नदी से बाहर नहीं निकलते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, टुपकियां लगाते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उपवास रखते हैं, उसके पहले खा लेते हैं उसके बाद में खाते हैं। तो कह रहे वो चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहा है, जब चंद्रग्रहण आएगा उस समय पूरा देश के लोग नदी में प्रवेश करेंगे, गंगा जी जमुना जी जहां जहां कोई नदी है अपने अपने पास, उसमें उतरेंगे, उपवास रखेंगे, और जब तक ग्रहण चल रहा है तब तक मुख से भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो चंद्रग्रहण आया और सब लोग नदी में उतर गए, गंगा जी में सब हिंदू लोग उतर के विष्णु नारायण कृष्ण के नाम ले रहे हैं, पुकार रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो मुसलमान लोग भी उनकी नकल करते करते हंसते हंसते भी वो ही बोल रहे हैं, हरे कृष्णा ऐसे आप लोग प्रेम से बोल रहे हैं, वो ना मजाक से बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग वही बोल रहे हैं, कोई मजाक से बोल रहा है, कोई हंसी मजाक उड़ा रहा है, या कोई दिल से बोल रहा है, कोई टाइम पास में बोल रहा है, कोई तड़प के वो बोल रहा है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं। कहते हैं नवद्वीप में उस समय भगवान का नाम आसमान में गूंज रहा था, इतने लोग नदी में उतर के भगवान का नाम पुकार रहे थे। उस समय इस बालक ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में जन्म लिया नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम रखा गया नीमाई। लेकिन जन्म में क्या लीला किया, ऐसे समय जन्म लिया पूरी दुनिया भगवान का नाम पुकार रही थी उस समय, यानी कि बता दिया इसी काम के लिए मैं आ रहा हूं, सब दुनिया के मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए इसके लिए आ रहा हूं मैं। उसके बाद में देखो बच्चा कैसे रोता है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं, चंदा मामा बग, आई कमल बग, ऐसा कुछ कविता बोलते हैं हम लोग बच्चे को शांत करने के लिए, है ना? बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं ना, तो घोड़ा आला टक टक टक, गाड़ी आली मक मक मक, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, तो बच्चा सुन के रोना बंद कर देता है। तो जब ये बालक जब रोना शुरू करता था ना, तो सब नेबर की, पड़ोस की जितनी भी कन्याएं थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ऐसे अलग अलग धुन में गाया करते थे। और बच्चा भी सा जब तक ये हरे कृष्णा मंत्र गा रही है तब तक बच्चा शांत, आपको लगेगा बच्चा शांत हो गया तो आपने गाना वाना बंद कर दिया, जैसे गाना बंद कर दिया वापस चालू रोना। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता जो इनके माता पिता थे बालक के, उनके घर में दिन रात कीर्तन ही होता था, क्योंकि बच्चा इतना चालाक था, गाना बंद कर दिया तो रोना चालू, गाना चालू तो रोना बंद, ऐसे इसका ट्रिक था। मतलब क्या दिखा दिया, अरे सब लोगों को तो ये नाम पुकारने के लिए तो मैं आया हूं, ये सब लोग पुकारते रहे इसलिए तो मैं आया हूं, आप पुकारना बंद करोगे मैं रोना चालू करूंगा, रोना बंद करने के लिए आप फिर गाएंगे तो मैं रोना बंद कर दूंगा, इस तरह से ये गाते थे। तो देखो भगवान क्या क्या नाटक नहीं करते, देखो आप आम और आपको बचाने के लिए क्या क्या खेल खेल रहे हैं भगवान। आप बताओ भगवान को क्या जरूरत है यहाँ आने की, हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, पाप करते हैं उनका फल भोगते रहते हैं, वो बोल रहे हैं आ जाओ, हम लोग ने नहीं आना है, बोले मत आओ, हम लोग क्या करेंगे? समझो आपके घर में जो रसगुल्ला बनाया, अपने बंगाली रसगुल्ला बनाया और सबको बता दिया हॉस्पिटल में आ जाओ, सबके लिए फ्री में बांट रहे हैं आज, तो कोई आता ही नहीं है, तो क्या बोले मत आओ, बिल्डिंग में बांट देंगे, इसमें क्या है, ज़्यादा मस्का नहीं लगाएंगे, तो तीन बार बोलेंगे प्रेम से, फोन करेंगे, SMS देंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फिर भी नहीं आए तो क्या करेंगे, नहीं तो ठीक है जिसको आना है आ गया, बाकी लोगों को हम लोग बांटेंगे खा लेंगे, उसको पीछे भागेंगे क्या, घर जाके देंगे, अरे आप लोग नहीं आए ना ये लो हमारी तरफ से रसगुल्ला खाओ, ऐसा कर सकते क्या? एक भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान ने बहुत सारा संतों को भेजा, हमको बुलावा दिया आ जाओ, आ फिर लौट चले, सब बताया बहुत सारा कुछ, नहीं आ रहे आप लोग, खुद आ रहे हैं, इधर आके बुलाने को आ रहे हैं, भैया चलो मेरे धाम में चलो, बहनों भाइयों आ जाओ, कोई सुन नहीं रहा है तो क्या बोल रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे, प्लीज प्लीज ले लो भगवान का नाम, कितने दयालु भगवान। मतलब एक बच्चे को पालन करने के लिए माता कितना कष्ट उठाती है, वैसे ही भगवान एक जीव को उद्धार करने के लिए कितना कष्ट उठाते, बिना जरूरत के उनके धाम में ना कोई कमी नहीं है। यहां से कितने लोग रहते हैं यहां पर उनको छोड़कर, उससे करोड़ों गुना अधिक लोग उनके पास में रहते हैं। जेल में कितना लोग रहते हैं, शहर के एक 5% लोग जेल में रहते हैं, 5% जेल में, 95% शहर में रहते हैं। उसी तरह से ये जेल में जितने लोग हैं ना, उससे करोड़ों गुना अधिक लोग भगवान के पास रहते हैं, अच्छी प्रेम से सेवा करते हैं, कोई पापी नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, परमार्थ नहीं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी उनको छोड़कर तुम्हारे हमारे पास में आते हैं, क्योंकि जो मेरे पास में है उससे अधिक मेरे को प्रेम उससे है जो मुझे छोड़ के चला गया है। आप देखिए, आप माँ बाप बनोगे ना कभी तो आपको याद आएगा, दो बच्चे घर पे हैं, एक गुस्सा करके घर से भाग गया है, तो दिन रात किसका ख्याल करेंगे आप, तो कोटे असेल, कहाँ रहेगा वो अभी, क्या करता होगा, कहाँ खाता होगा, कहाँ सोता होगा, हाँ दो बच्चे पास में लेकिन मन उसके पास में। बच्चे पूछते हैं घर वाले, मैया हम तो आपके पास में है ना, तो उसका क्यों विचार करती है जो तुम्हारे पास थे तुमको छोड़ के चला गया है। बोला है, तुम माँ बनोगे ना तभी समझोगे कि मेरे मन की ममता क्या है, अरे तुम तो मेरे पास में ही हो, हमेशा मेरे गोद में हो, जब चाहे तुमको चुम्मा ले सकती हूँ, लेकिन वो तो दूर चला गया ना, उसी की याद करती रहती हूँ, वो कब लौट के आएगा। ये ऐसे ही हमारे भगवान है, इतने लोग पास में रहते हैं लेकिन याद उनके करते हैं जो हमारे जैसे उनको छोड़ के नीचे आए हैं, दुख भोग रहे, धक्का खा रहे हैं, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा क्या क्या तकलीफ ने उठा रहे हैं, और बाद में बोलते हैं तुम लोग अच्छे लोग हो ना, यहाँ अच्छी तरह रहो, मैं जाके आता हूँ जरा, वो जो खोए हुए बालक है ना, खोए हुए, उनको मिलके आता हूँ जरा, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ, कोई आ जाए साथ में तो अच्छा है, पूरा 50 साल के लिए जाके आता हूँ नीचे, 48 ईयर्स नीचे रहे वो, सबको पुकारते हुए आ जाओ करके। मैं आपको खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, फिर भी हम लोग बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सच बोलो, नहीं प्रभु जी टाइम नहीं मिला, तो पक्का है 12 दिन ड्यूटी कराई चाहिए, एवडे पोर बाड़ा घर सांभाड़ा ची, हे टाइम नहीं बाबा टाइम में, ये जब भी करने को टाइम किसको है, हाँ कितना टेंशन है घर पे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सब लोग अधिकतर लोग बोलते हैं टाइम नहीं प्रभु जी टाइम नहीं, दिन कभी उगता है कभी ट्रेन में बैठते कभी शाम होती है रात को, इतना थक जाते हैं, और आप बोल रहे हैं प्रवचन में बार बार नाम लो नाम लो, अरे इधर क्या, आप एक बार जाके देखो चर्च का गाड़ी में चढ़ के देखो, फिर बोलेंगे भगवान का नाम कैसे लेना है, अच्छा इधर एसी में बैठ के प्रवचन करते हो या बोलते हो भगवान का नाम लो, एक बार विराट की गाड़ी में पकड़ो हमारे साथ में सुबह, फिर पता चलेगा भगवान का नाम कैसा होता है, ऐसे बोलने वाले होते हैं क्या, अभी बोलेंगे उनको, हम मना नहीं करते हैं, चर्च गेट में भीड़ नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं है, लेकिन फिर भी ये झंझाल से निकलना है बाहर तो नाम लेना है आपको, वही तो बता रहे हैं आपको, इतना कष्ट की जिंदगी जी रहे ना, उससे बाहर निकलने के लिए उपाय है ले लो, वो और जो गाली देगा बोलेगा कोई बात नहीं लेकिन नाम तो लो। ऐसे गदाधर दास था, वो काजी के पास में गया, हाँ, और बीच रात में उसके बंगले में गया, बोला काजी हरे कृष्णा बोलो, तो काजी को लगा पागल आदमी है ये, एक तो इसकी हिम्मत इतनी कि मेरे घर पे घुस के मेरे को हिंदू का नाम बताने को बोल रहा है, और बीच में रात को आके वो 2 बजे तो भी ये बोल रहा है काजी एक बार तो बोलो, तो काजी बोलता है मतलब उसको गुस्सा नहीं आता है, उसको पागल आदमी है अभी कैसे भी निपटाना है इसको, बाहर लेके जाना है, बोलते है मैं हरे कृष्णा कल बोलूंगा तो बोलते आपने तो बोल दिया ऑलरेडी हरे कृष्णा कल बोलूंगा, उसके आगे बोला ना, पहले हरे कृष्णा तो बोल दिया ना, और नाचने लगा, बोलते पूरा ही पागल है आदमी, अभी एक्चुअली वो मौत के मुंह में गया था, सोचो आप, एक चांद एक काजी के घर में जाके उसको हिंदू का नाम लेने को बोलना, मतलब मौत को निमंत्रण देना है, कभी भी तलवार उठा के गला काटेगा आपका, वो मौत के मुंह में जाने का रिस्क लिया उसने, और काजी को भगवान का नाम देने का प्रयास किया, बोलो ये भगवान के भक्त हैं, तो भगवान खुद भी आते हैं, ऐसे रिस्क लेने वाले भक्तों को भी भेजते हैं, जान लेने वाले लोगों के बीच में भी भेजते हैं, बोलते नाम लो भगवान का, तो वो भगवान जो है ना उनकी लीला में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बचपन में क्या क्या किया उन्होंने, हाँ एक बार ऐसे भगवान खेल रहे थे, छोटे से बालक से गोद में थे, हाँ माँ उनको आंगन में लेके बैठी थी सच्ची माता, उतने में ना माँ को दिखाई पड़ता है आकाश से हजारों देवता लोग उतर रहे हैं उसके आंगन में, अपने चमक चमकदार शरीर लेकर, गहना पहन के हुए, सुंदर घुंघराले बाल, ऐसे अलंकार पहने हुए, सुंदर चमकदार वस्त्र पहने हुए, सुंदर सुंदर व्यक्ति, तेज वाले, ऐसे एक नहीं हजारों आकाश से उतर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कहाँ उतर रहे कहाँ उतर रहे, अरे कहाँ उतर रहे क्या, तुम्हारे आंगन में उतर रहे हैं, खुद के आंगन में उतर रहे हैं, वो हैरान हो गए देख के, और फिर क्या किया उसने, वो देवताओं में से कुछ देवता आगे आए और बालक को सच्ची माता के गोद से ले लिया, अपने पास ले लिया, और एक रत्नों से भरा हुआ टेबल वहां खड़ा कर दिया, मेज मेज, उसके अंदर एक सोने का पात्र रखा बड़ा, उसके अंदर बालक को बिठाया और स्वर्ग से लाए हुए दूध दही मक्खन घी हाँ हनी इनसे अभिषेक करने लगे, बहुत देर तक दिव्य अभिषेक किया, अभिषेक का भी पानी है ना जो पंचामृत वो सब जमीन पे गिर रहा है, उसके बाद में चरणामृत लोगों ने पिया, कुछ लोग नाच रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, देवता लोग हाँ इधर के लोग नहीं, देवता लोग कीर्तन कर रहे हैं आंगन में आके, मैया देख रही है, उसको चिल्लाने का था, उसको बोलने का था क्या हो रहा है पति देव किधर हो, लेकिन वो बोल ही नहीं पाया, कंठ उसका बंद हो गया था, ऐसा कभी होता है कभी कभी, या बहुत डर लगने से या बहुत खुशी होने से, अरे आवाज ही निकलता नहीं, तो वो कोशिश कर रही है पति देव को बुलाने के लिए, आओ देखो क्या हो रहा है, लेकिन बोल ही नहीं पा रही है, ऐसे एकदम स्टंड हो गई, वो शॉक हो गई। देख रही है फिर भी दिखाई सब कुछ पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? अभिषेक किया जा रहा है, वाद्य बज रहे हैं, सितार बज रहे हैं, वायलिन बज रहा है, हाँ सब कुछ दिव्य वीणा बज रही है, और दुष्ट देख के बड़ा आनंद हो रहा है। और इतना आनंद हो गया उसको देख के कि खुद बेहोश होकर गिर गए धाड़ करके। उसका जो आवाज आया ना धाड़ करके, वो सुनकर पतिदेव भाग के आए, क्या हुआ? तो बेहोश पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, उसको जगाते हैं पानी मार के। तो सची माता क्या हो गया, सची देवी क्या हो गया तेरे? बोलते हैं इतने बड़े देवता, इतने तेज वाले, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, मेरे को मेरे गोद से बच्चा ले लिया, उधर सोने के मेज पे रख दिया, कीर्तन कर रहे थे, अभिषेक किया, देखो आंगन में सब चरणामृत गिरा हुआ है। तो देखते तो क्या आंगन में कुछ नहीं, सब क्लीन है, कोई चिन्ह भी नहीं है कि यहां पर कोई आगे गया था, कोई पैर का चिन्ह है या कुछ ऐसा, कुछ कुछ फूल गिर गया तो फूल का पंखुड़ी गिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर, कुछ भी चिन्ह नहीं है। तो वो अपने पति को पूछती है कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूं कि सच में हुआ था ये? वास्तव में सच में ही हुआ था, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्या क्या मेरे घर में देवता आ सकते क्या, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार सांप आया, सांप आए तो आप लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे सब लोग, डर के मारे भाग जाएंगे, कांपेंगे, ऐसा पसीना आएगा आपको, कोई डंडा ढूंढेंगे, डंडा की तरह कोई चिल्लाएंगे, सब गांव को इकट्ठा करेंगे, सांप आ गया, सांप आ गया, ऐसे ही हो गया। लेकिन ये जो बालक है ना, सब लोग सांप से दूर भाग रहे हैं, ये सांप की ओर भाग रहा है, तो एकदम सांप के पास में गया। अभी देखो बालक सांप के पास जा रहा है, लेकिन बचाने वाले उसके पास जाने को डर रहे हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा बालक को बचाने के लिए, सांप मुझे काटेगा, तो कोई बालक के पास आने को तैयार नहीं है। और बालक और पास जा रहा है सांप के। जैसे ही बालक सांप के पास पहुंच गया, सांप गोल गोल हो गया और एक ही जगह रुक गया, बालक जाके उसके बीच में जाके सो गया। इतना छोटा बालक था ना वो, सांप भी इतना बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा था, गोल गोल करके ऐसा बेड बनाया अच्छी तरह से, उसके अंदर बालक जाके सो गया। अभी सब लोग टेंशन में है, अभी जाके अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सांप भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सांप काटेगा, और बिना कुछ किए खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बालक सांप के गोद में है, टेंशन तो है ही ना। बहुत देर तक लोग ऐसे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, बालक आराम से सोया हुआ है, सांप भी आराम से गोल करके बैठा हुआ है, कि वो दोनों को कोई टेंशन नहीं है, सब दुनिया को टेंशन है, लेकिन दोनों आराम से पड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद में बालक उठ जाता है, ऐसे करता है, सांप भी गोल का लंबा हो जाता है, चला जाता है, बालक अपने घर पे लौट के आता है। वो कौन था सांप बताओ? अनंत शेष। वो जानते थे मेरे मालिक स्वामी भगवान बालक बनकर लीला कर रहे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, इसलिए उनके आंगन में वो अनंत शेष नाग आए थे और श्री कृष्ण भगवान बालक बनकर उनकी गोद में सो गए थे। जैसे क्षीर सागर में सोते हैं ना, ऐसे इतने बड़े फन से गोल 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 करके बिस्तर बनाते हैं, उस पर भगवान लेटते हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण जमाते हैं। इतना सुंदर लीला उन्होंने सच्ची माता के आंगन में किया, जो समुद्र में करते हैं हमेशा के लिए, वो सच्ची माता के आंगन में बंगाल में नवद्वीप में किया। फिर एक बार क्या हुआ, थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए तो माता ने कुछ बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ बोला, तो इसने क्या किया, अपने छोटे से हाथ से माता को एक थप्पड़ मार दिया। बच्चे होते ना ऐसे कभी, हाँ ऐसा करके मारते पापा को मम्मी को, ऐसे माता को अपने नन्हे नन्हे मुलायम मुलायम हाथ से एक थप्पड़ मार दिया, और माता भी कैसे अचानक बेहोश होकर गिर गई एक इतने से हाथ लगाने से। तो बच्चा फिर डर गया एकदम, भगवान है लेकिन डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सब सखियां भाग भाग के आते हैं, पड़ोस वाली बोले निमाई तुमने माता को मारा, देखो माता बेहोश हो गई, अब माता को होश में कैसे लाओगे? तो पूछता है क्या करूं, कैसे होश में लाऊं बताओ, आप बताओ। बोले जाओ दो नारियल लेके आओ, कहीं से भी नारियल लेके आओ, फिर वो होश में आ जाएगी। अभी उनको प्रश्न पड़ रहा है मन में, इतना सा बालक नारियल कहाँ से लाएगा? तो अभी लेके आता हूँ। बाहर जाता है और कुछ ही मिनट में दो नारियल लेके आता है। सबको आश्चर्य होता है, अरे क्या हुआ? जैसे बालक नारियल लेके आता है, माता होश में आ जाती, माता को बालक बोलता है मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। थोड़े बड़े हो गए और घर में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था भगवान का, तो बर्थडे में कैसे बहुत मेहमान आए हुए हैं, हलचल मच रही है, कोई फटाका फोड़ रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है, कोई म्यूजिक बज रही है, कुछ नाच कर रहे हैं, सब अपना चल रहे हैं ना, मंत्र लोग ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे हैं, सबको जैसा क्या है बिजी बिजी माहौल है सब जगह पे, कौन किसको मिल रहा है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसको पता नहीं है। तो बालक भी बीच में सर सबके बीच में खेल रहा है, सबको पता है कि इसके बर्थडे के लिए सब लोग इसके साथ खेलते होंगे। अचानक बालक जो है उनके बीच में से बाहर आता है रोड की तरफ, होता है ना कभी कभी बच्चे कैसा है कुछ देख देख के ऐसे बाहर चले जाते हैं। तो दो चोर आए वहां पर, चोरों ने क्या देखा, अरे इस बालक के ऊपर इतने गहने हैं, रत्नों के हैं, हीरों के हैं, सोने के हैं, जवाहरात कितने हैं, इस बालक को उठाया जाए तो दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गहना पहना हुआ है। तो बाहर आके बोलते हैं बेटा तुमको संदेश खाना है, संदेश आप जानते हो संदेश क्या है, संदेश पनीर का बनता है, दूध का वो है ना छेना निकालते ना उसमें भी मिठाई मिठाई मिला के संदेश बनाते हैं। तो कहते हाँ हाँ चाहिए चाहिए मुझे चाहिए संदेश चाहिए, बोलते हैं हाँ बांग्ला में बनता है प्रभु जी जानता हूँ मैं। तो भी फिर उसको बोलते चलो हमारे साथ, तो बालक बोलते हाँ चलो, तो दो चोर उसको उठा के लेके जाते हैं और पूरा मार्केट में से जा रहे हैं। तो बालक पूछता है मिठाई किधर है, मिठाई का नाम लेके आए थे ना, अरे हाँ मिठाई मिठाई। तो मिठाई की दुकान में रुकते हैं, कुछ रसगुल्ला संदेश काला जाम सब ले लेते हैं, उसको खिलाते हैं ऐसे वैसे ऊपर से, इधर बिठा ना दो पैर पैसा बिठाया है तो ऐसा खिला रहे उसको। उसके बाद में बोलते हैं हम आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो चोर बोलते हैं आपके घर पहुंचाने को ले जा रहे हैं, डोंट वरी आपके घर पहुंचा रहे हैं। उतने में घर पे क्या होता है, बालक गायब है, जिसका बर्थडे करना है सब वो बालक ही गायब है, बाकी सब लोग है। तो बोले अभी था हाँ हमने देखा था अभी था, इधर था उधर था, कैसे बोलते हैं लेकिन कभी किधर भी नहीं है, इसका मतलब बालक कहीं रास्ते पे निकल गया है। तो मार्केट में ढूंढते हैं, किधर दुकान में ढूंढते हैं, कहीं भी नहीं मिलता है। और ये बालक क्या है, इसके कंधे पे बैठकर सैर कर रहा है सब जगह पे, और बीच में पूछता भी है मीठे मीठे बातों में, अच्छा सब देख रहा है, मजारा देख रहा है, लाइट देख रहा है, दुकान देख रहा है, सब देख रहा है बाजार हाट में। और फिर पूछता है कि कहाँ ले जा रहे हो, बोले घर ले जा रहे हो, और जा रहे हैं अपने एकांत जगह पर जहां पर छुप छुप के छुपा कर सब गहने उतार के इसको छोड़ दिया जाए। तो अचानक ना घूम फिर के वो चोर लोग है ना अपनी जगह पे आ जाते हैं जहां पर उनको बच्चे को अभी निकाल कर गहने निकाल कर चोरी चोरी करना है, तो उसको उतार देते हैं। तो चोरों को दिख रहा है कि हमारा घर है और बच्चे को उतार देते हैं चोरी करने के लिए। कुछ देर बाद में जहां पर उतार दिया वो घर दिखाई पड़ता है कि सची माता का घर है जहां से उसको उठाया था, मतलब चोरों को भ्रम में डालते हैं पूरा, और पूरा गांव पर सैर करा के वापस उधर ही लेके आते हैं जहां से उठाया था और दिखाते हैं कि ये तुम्हारा घर है, मतलब उनका ही घर है। लेकिन जैसे चोर को मालूम पड़ता है कि अरे ये तो हमारा घर नहीं है, तो सची माता का घर है जहां से उसको उठाया था, तो अभी हमको लोग पकड़ेंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं चोर, और बच्चा जो है घर में भाग जाता है। सब लोग आके भाग कर रहे, निमाई तुम कहां थे तुम किधर थे, और लोग बोलते हैं कि हमने उसको देखा था, दो आदमी उसको उठा के ले गए करके, लेकिन किसने देखा नहीं चेहरा क्या था उनका, अभी क्या देखा किसने, अरे अभी आया दो आदमी लेके आए थे उनको। तो वो माता पिता क्या बोल रहे हैं, अरे उनको बख्शीश दो बख्शीश, वो मेरे खोए बच्चे को उठा के लेकर आए, कहीं मार्केट में गुम हो गया था तो ये दो बच्चों को आदमियों को पकड़ के लेके आओ, किधर गए वो, हमारा धन्यवाद करना है उनका कि हमारे खोए बालकों को उठा के जगह पे पहुंचा दिया है, थैंक यू बोलना था, किधर गए। वो भाग रहे, तो लोग वो सची माता के हस्बैंड पूछ रहे हैं, अरे उनको बोलो भाग क्यों रहे वो, रुको 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 उनको कुछ देना है। तो उनको लग रहा है कि कुछ बख्शीश का बहाना बहाना के पिटने वाले है, इसलिए और जोर से भाग रहे चले जाते हैं। ऐसे बचपन में गौरांग महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला किया, और व्यासदेव के अवतार हैं जो बताते हैं कि ये सुंदर सुंदर लीला जो प्रेम से सुनता है वो दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए नहीं आएगा, उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्यों करते हैं भगवान लीला बताइए, ये सब करने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लेने के लिए आए ना, भगवान का नाम दो चले जाओ, ये सब खेल खेलने की जरूरत क्या है। इसलिए करते हैं कि आप और हम सालों सालों तक, युग युग तक उसके बारे में चर्चा करते रहे, है ना। हम लोग को चर्चा करने के लिए कुछ विषय मिले, नहीं तो हम चर्चा किसकी करेंगे। ये फिल्म स्टार का, उस फिल्म स्टार के बाद में लव अफेयर कभी हुआ और कभी टूट गया, फिर शादी किससे किया और शादी की टूट किससे गया, ये चर्चा करेंगे ना। उसने क्या किया, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, उसका लड़का दारू पीता है, उसकी लड़की ये करती है वो करती है, नवरात्रि में रात तक नाचती है, यही बोलेंगे ना हम लोग। हमारे लिए चर्चा करने के लिए विषय क्या है, अच्छा विषय क्या है, तो हमारी चर्चा के लिए अच्छा विषय देने के लिए ये सब करते रहते हैं। नहीं तो नरसिंह भगवान खंभे से पैदा होना, आधा अनमनुष्य आधा सिंह बनकर आना और पेट फाड़ना, ये सब करने की जरूरत क्या है। छोटा सा बन के अंदर जाने का, एक मेन आर्टरी काट देने का अंदर से, है ना, मेन आर्टरी है ना, कट, कोई जख्म नहीं, कोई घाव नहीं, कोई टाका नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा उधर, हिरण्यकश्यपु समाप्त हो जाएगा। फिर आप लोग क्या बताएंगे कि भगवान ने इतना रूप धारण किया, एक नाइफ लेके अंदर का मेन आर्टरी काट दिया, इतना ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे ना, खंभे में से बाहर आए, अकराल विकराल रूप धारण करके हा गर्जना किया, फिर युद्ध किया शाम तक, फिर सब ब्रह्मा के वरदान को रखा ऐसे ही, फिर गोद में लिया, फिर दहलीज में गए, फिर दो हाथ से फाड़ दिया, दो हाथ से हाथों का हार बना दिया, दो हार से पकड़ के रखा, हाँ हार्ट को फल की तरह तोड़ के ऐसा जमीन पे फेंक दिया, फिर धक्का मार के नीचे उतार दिया, फिर सब भाइयों को भी मार डाला, फिर भी चिल्ला रहे थे गुर्र गुर्र करके, देवता लोग कांप रहे थे, फिर प्रहलाद को आगे किया, बोला तुम हार पहनाना उसको, इतना सब क्यों किया, ताकि हमको सुनने के लिए कुछ मिले ना। अभी ड्रामा बोलेगा कितना घंटे का है, अरे घंटे का नहीं है, 5 मिनट का ड्रामा है। अरे 5 मिनट में क्या होता है, ऐसा आँख झपकेगा तो 5 मिनट खत्म होते हैं। नहीं राम, ड्रामा कितने घंटे का है, 4 प्रवेश है उसके अंदर, एक एक प्रवेश आधा आधा घंटे का है, टोटल ड्रामा 2 घंटे का है, बीच में एक 15 मिनट का इंटरवल भी है। तब बोले हाँ कुछ है बाबा, 2 घंटे के लिए कुछ कर्मणुक मिलेगी हमको अभी, है ना। इसलिए भगवान सब इतना सब खेल खेलते हैं, ताकि तुमको और हमको बोलने के लिए, बताने के लिए, सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ मिले, और इतनी सी किताब के बदले में इतनी किताब बने, ताकि आप सुनते रहे तो समाप्त नहीं होगा। बच्चे बोलेंगे पप्पा कल की कहानी क्यों बोल रहे हो, कुछ नई बताओ ना, और नई भी है उसके अंदर, बोर नहीं होगा आपको कभी। इसलिए भगवान करते हैं, तो मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, इतना भगवान मेहनत कर रहे हैं, जो अंदर जाके एक आर्टरी को काट सकते हैं वो इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं, पूरा इतना लीला कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपको लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम उनका नाम तो लेना चाहिए। वो इतना मेहनत कर रहे हैं बेचारा, अपना घर छोड़ के, अपना लोक छोड़ के, ये दुनिया में आके इधर हमारे साथ रह के पुकार रहे हैं, लीला कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिखा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बार बार पुकार रहे हो। हाँ मार खाए प्रेम दे क्या बोले हो, क्या नाई रे, दयाल तो नाई रे, मार खे प्रेम दे दयाल तो नाई रे, मतलब ऐसा कोई प्रेम देने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक, जो खुद मार खा रहा है फिर भी प्रेम दे रहा है, ऐसा क्या होता है क्या। हम लोग मार नहीं देंगे तो प्रेम दे सकते हैं, लेकिन मार देने के बाद प्रेम कैसे देंगे। लेकिन ये मार खा रहे हैं, शराबियों का मटके का मार खा रहे हैं, रक्त बम्बाड़ हो रहे हैं, खून से लथपथ हो रहे हैं, और मार खे प्रेम दे दयाल तो नहीं रे, ऐसे दयाल कोई दुनिया में हुआ नहीं आज तक। भगवान स्वयं आकर इतने दयालु बन रहे हैं, हमको विनती कर रहे हैं कि हमारा नाम ले लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू में क्या बोला, कि जो हमने बोला ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, यही अगर हम आधा घंटा बोलते रहते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वही सबका सार है, सब सुनने का फल वही है, सब सुनने के बाद में करना भी वही है, तो समय बर्बाद क्यों करना है, जिंदगी बर्बाद क्यों करनी है, जो नाम लेना है उसके लिए देर क्यों करनी है, समय व्यर्थ क्यों गंवाना है, जो करना ही है उद्धार के लिए वो अभी क्यों नहीं करना है, यही जीवन के प्रश्न है। चाहे हम गरीब है अमीर है, लेकिन करना तो वही है, चाहे हम अमीर और गरीब है, दोनों के जीवन का उद्देश्य भी एक ही है। वो बदलता नहीं है। क्यों समय बर्बाद करना है? महाप्रभु भगवान चैतन्य आ रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, तो लेना है। एक बार पुकारो सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।